जाते पुनः पुनः श्रीमद्रूप पदाम्बुज धुरी जन्मनि जन्मनि सर्वप्रथम आश्रम के कृपात पदों में आश्रम को कोटि दंडवत प्रणाम के ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित मंच पर विराजमान पूज्य संतजन उनके शिष्यों में पुनः पुनः प्रणाम निवेदन है। उपस्थित वैष्णव वृंद समस्त सज्जनों माताएं बहनों सबको मेरा प्रणाम स्वीकार है। आज हम लोग श्री रूप गोस्वामी प्रभु जी के इस समारोह में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। पूज्य वैष्णव जनों के विद्वान के भाषण में सार मर्म कथाओं का सार, जिसमें श्री रूप गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र, काव्य शैली, उनकी महत्ता, वैशिष्ट्य, कवित्व, व्यक्तित्व, इन सब पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने वक्तव्य को रखा है। जय हो सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ अभिष्ट पूरा गोसाई जबे प्रजे कैलवास, राधा कृष्ण ने कलीला करीला प्रकाश। आप लोग जानते हैं मथुरा के पाठाई रूप सनातन महाप्रभु जी ने दो सेनापति को मथुरा में भेजा, जो कि श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी, जिनके द्वारा पश्चिम भारत आदि से लेकर के सर्व भारत सर्वदेशीय रूप में समस्त जनों के बीच में जो संपूर्ण विश्व अचेतन जड़वत बना हुआ, ऐसे अचेतन विश्व को पुनः चेतन कराने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाठी को यहाँ भेजा, जो कि यहाँ आकर के उन्होंने समस्त विश्व संसार को चेतन कराया। क्योंकि श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद आदि यदि नहीं आते तो चैतन्य महाप्रभु जी जिस महाभाव प्रेम को लेकर के आस्वादन कर रहे हैं, तो उनका भाव आस्वादन तक वहीं तक सीमित रह जाता, लोग समझ नहीं पाते। इसलिए वृंदावन के इन महानुभावों ने सर्वप्रथम महाप्रभु जी की वंदना के द्वारा उनके भाव प्रकटन, भाव माधुरी को विश्व जगत में प्रकाशित किया। महाभाव का आस्वादन करने वाले रसिक शेखर ब्रजविलासी कृष्ण की रसिकता का जो चरम उन्नति है, चरम स्थिति है, इन सब भावों का वर्णन श्री रूप गोस्वामी पाद जी नहीं आते तो यह दुर्लभ ही रह जाता। जैसे कि शास्त्रों में वर्णन हुआ है, प्राचीन वेद वैदिक सिद्धांत से लेकर के पुराणों तक समस्त शास्त्रों में सब कुछ वर्णन हुआ, कृष्ण ही पर देवता और कृष्ण का भजन करें तम भजत तम रसे तम जदि, कि रस पूर्वक उपासना करें, उनकी सेवा करें, उनकी आराधना करें, ये समस्त वर्णन हुआ है। परंतु विशद रूप से उसकी व्याख्या कहीं पर देखने को नहीं मिल पाता है। ब्रह्म पुराण में भी रस के विषय में कुछ वर्णन करके केवल सूत्र रूप में निदर्शन मिलता है। उन सूत्रों के आधार पर यदि देखा जाए, श्री रूप गोस्वामी पाद ने उसको विस्तृत किया। राधा कृष्ण के लीलाओं में संबोधित करते हुए इस प्रकार से वर्णन जो कि श्री भक्ति रसाने सिंधु श्री उज्जैन मणि आदि ग्रंथों में हुआ, ऐसा और कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार श्री रघु गोस्वामी पाद श्री महाप्रभु जी के मनोभीष्ट प्रचार करने के लिए, उनके मनोभीष्ट पूर्ण करने के लिए उनके आदेशों का पालन किया, जो कि मथुरा में जाकर के चार कायदे समाधान करना थी। श्री विक्र प्रकाश लुप्त तीर्थ बुद्धा भक्ति ग्रंथ प्रणयन और वैष्णव सदाचार प्रवर्तन, इन चारों कार्यों को सिद्ध करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद ने एक साधक जीवन के प्रारंभ स्टेज से उपदेशामृत के बाद वेगम मनस क्रोध वेगम से लेकर के और सर्वोत्तम अवस्था तक पहुंचा दिए, जहाँ की प्रेम विवर्त और प्रेम विवर्त की चरम स्थिति पर। वैष्णव कवियों ने श्री रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्व को स्वीकार करते हुए संत पुरुष ने उनका रूपानुगत स्वीकार करते हुए उनके श्लोकों की अभिव्यंजना अपने अपने भावों के द्वारा व्यक्त किया है अपने अपने भाषा में। इसलिए उन सभी भाषाओं में हम देखते हैं, जैसे वधु की आर बोली बतोरे अपन अथाई अपीरिति करे नु रही ते नारी नु धरे मरी अधरी व नंदर नंदन तुम्हारे करीब राखा। राधा जी कहती है मैं मर करके नंद नंदन बनूंगी और तुम्हें राधा बनाऊंगी। उस समय तुम राधा बन करके जमुना में पानी भरने के लिए जाओगे, तो उस समय मैं बंसी बजाते हुए दूर हट जाऊंगा, मेरे तिरह में मूर्छित हो करके जब तुम्हारी दशा होगी तब तुम समझोगे कि प्रेम की क्या ज्वाला है। इस प्रकार के भावनात्मक श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्लोकों में उच्च नैयमणि में अद्भुत अद्भुत वर्णना किए, जहाँ पर श्री राधा जी के अत्यंत चरम विरह का वर्णन, जिस विरह में राधा जी अधीर हो करके मरे ले पानी अरेको तमाले रटा ले, मेरे मन एक बार कमाल के डाल में बांध के रखना और मेरा पंच तत्व जहाँ कृष्ण है वहाँ पहुंच जाए, वहाँ की मिट्टी में मिट्टी मिल जाए, वहाँ के जल में जल मिल जाए, वहाँ की अग्नि में अग्नि मिल जाए, इस प्रकार वहाँ की हम वही सेवा करें। मन के पश्चात भी सेवा की प्रार्थना और चरम विरह का वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद इस तरह से व्यक्त करते हैं कि यहाँ वृंदावन में श्री राधा जी है और कृष्ण है द्वारकापुरी में, रुक्मिणी के साथ में एक पलंग में विलास परायण है और ऐसे समय में विलास युक्त हो करके भी श्याम सुंदर मूर्छित हो जाते, उनके मूर्छा की अवस्था देख करके रुक्मिणी को भी बड़ा आश्चर्य होता है, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या बात, किसी के समझ में नहीं। ऐसे मदराष्ट्र की स्थिति में यहाँ की जो विरह दशा और कृष्ण वहां से अनुभव कर रहे हैं, वहां पे मूर्छित हो जाते। ऐसे जो प्रेम की रीति विरह का वर्णन जैसे करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद ने दिखाया कि आने वाली पीढ़ी में भक्तों को इतना विरह पीड़ा होगी इसको सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ललित माधव और विदग्ध माधव ग्रंथ में जहाँ लीलाओं का लीलाओं की संगति की है और अनुराग की पराकाष्ठा पर पहुंचाते पहुंचाते अंत में मिलन दिखाया और मिलन के बाद कहा कि विरह के बिना तो मिलन की पुष्टि नहीं होती है, परंतु महाप्रभु जिस विरह में प्रलंब रस की साधना करने आए और उस भाव का आस्वादन कर रहे हैं, उस विरह को प्रसन्नित करने के लिए द्वारका लीला का वर्णन किया है, एक अभिनव संगति प्रस्तुत की है, जहाँ पर ब्रज गोपियों को वहां तक पहुंचाए हमसे कहती है। इस तरह से विरह को प्रसन्नित करते हुए ऐसे ऐसे विरह का वर्णन दिखाया। रस शास्त्र की संगति में रस की जो चमत्कारिता है, अभी अभी आपने सुना है साधारण ही समंजसा और समर्था, हमारे श्री परम गुरु महाराज जी ने जो कहा है, हम लोगों ने महाराष्ट्र के मुखार बिंद से सुना है कि द्वारका में दासव भाव है, वहाँ रस की स्थिति कहाँ है। उनके लेमन के व्याख्या में या कथाओं के वर्णन में उन्होंने कहा वहां तो सखी अभाव है, सखी अभाव में रस की स्थिति नहीं होती। आज आपने ने श्रवण किया था श्रीदेव गोस्वामी पाद जी के विचार को, एक जगह ऐसे भी विचार वर्णन किया है श्रीदेव गोस्वामी पाद ने स्वकीय और परकीय के विषय में, जो कि बड़े सहज सुंदर रूप से अति सहज रूप में समझा दिया है एक रूप शब्दों में। ये स्वकीय में तीन दोष आता है और परकीय में ये तीन दोष नहीं, जो कि विवाह होने के पश्चात पति पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं, पहले पहले मिलन में बड़ी उत्कंठा रहती है और दो चार साल बाद फिर वो आसक्ति उत्कंठा नहीं रहती। दूसरी बात, एक दूसरे का दोष देखना शुरू हो जाता है, इसलिए झगड़ा विवाद शुरू होता है, प्रेम कम हो जाता है। तीसरे नंबर में जबकि एक दूसरे में एक पत्नी को पति के अधीन बन करके रहना पड़ता है, पराधीन जीवन हो जाता है। जहाँ व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं, व्यक्ति स्वाधीनता नहीं, तो वहाँ प्रेम की स्वाधीनता कहाँ। इसलिए सखिया में ये तीनों दोष हैं, ब्रज गोपियों में ऐसा नहीं था। क्यों? कहू मिले कहू ना मिले दैवे घटन चेतन चेता में पश्चात बाधा, बाधा के बाद बाधा, ऐसे बाधाओं को अतिक्रम करते हुए मिलन की चरम उत्कंठा दिखाई दी। इसलिए अनुराग की पराकाष्ठा जहाँ पर नित्य नव नवायमान रूप में कृष्ण को अनुभव करें, प्रतिक्षण नित्य नव नवायमान रूप में जहाँ पर अनुभव होता है वहां पर अनुराग कहा जाता है। ऐसे अनुराग प्रेम स्नेह मान प्रणय अनुराग भाव महाभाव के सब के अलग अलग रूप से व्याख्या और इसका निरूपण करते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। जहां पर भाव महाभाव की स्थिति में जहाँ पर समस्त भाव विकारों को अतिक्रम करके या समस्त भावनाओं को अतिक्रम करके केवल हृदय में अनुभव होता है ससंवृत्त दशा समस्त प्रकार के सुदृप्त भाव हृदय में प्रकाशित होने पर यह भाव उदित होता है। इसलिए कभी मिले कभी ना मिले दैवे घटन ये समस्त बात कही है। कृष्ण को कभी भी गोपियां दोष दृष्टि से नहीं देखती हैं और निरंतर मिलने की उत्कंठा अपने घर में रहती हैं, पति के घर में रहती हैं, पिता माता के यहाँ रहती हैं। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की जो पराकाष्ठा है इस भाव में श्री रूप गोस्वामी पाद कन्नका और परोड़ा सब प्रकार का वर्णन करते हुए कन्नकाओं में भी पर किया तो दिखाया कि कन्नकाएं जाना है कृष्ण के प्रति एक निष्ठ है तो उनमें परकिया तो कैसे संभव होता है। परकिया तो उसी को कहते हैं जो कि एक पति पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष में आ सकते हैं, तो कन्नकाओं में परकिया भाव कहां से आया। इस भाव को समझना भी बड़ा कठिन होता है। यहाँ पर समस्त सीमाओं का अतिक्रम करके जहाँ पर भाव की परावृति है वहां पर परकिया तो दिखाया, न कि लोकित दृष्टि से कोई पति को छोड़ दिया कोई उनको पति को ग्रहण कर लिया ऐसे दृष्टि से नहीं। गोपियां जैसी पतिव्रता शिरोमणि और कोई नहीं है और गोपियां जैसे एक निष्ठ और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ करके कृष्ण के पास जाती है और अरुंधति अनसुया आदि नारायण को एक बार यदि देख ले तो उसमें मोहित हो जाएंगी, इसलिए पतिव्रता कहा रहती है। परंतु गोपियां कृष्ण को छोड़ करके कभी भी नारायण को देख करके मुग्ध नहीं, या कृष्ण चतुर्भुज रूप बनने पर भी उनके प्रति मुग्ध नहीं हुई। इसलिए गोपियों की जो भाव सीमा एक निष्ठा कृष्ण में एक निष्ठा भाव और उनमें अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया है समर्था के विषय में। समर्था का विषय वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं बचपन से गोपियों का कृष्ण से संबंध है, जब से माँ यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से बांधा तब से गोपियां कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ी, इसलिए तब से संबंध है और उस संबंध के कारण गोपियां गोपियों का जो भाव है प्रेम है उसमें कोई भी हेतु नहीं। समझ सा रहने वाली जो द्वारका की रमणीय है पूर्ण यौवन अवस्था होने पर एक पुरुष के प्रति जब आकर्षण होता है उसी आकर्षण की दृष्टि में इस हेतु के कारण कृष्ण में उनकी भावना बनी है। परंतु बड़े गोपियों का ऐसा कोई भी हेतु नहीं, निर्हेतु प्रेम। इस निर्हेतु प्रेम के कारण समस्या कही गई है, जिस प्रेम के सामने कृष्ण झुक गए, नृसिंह हो गए। इस प्रकार श्री गोस्वामी उपाय वर्णन करते हैं, ऐसे प्रेम को समझना चाहिए कि गोपियों के भाव में प्रेम में किसी प्रकार कोई कामना नहीं है। अब चला जाए श्री भक्ति रसामणि सिंधु की ओर। जब पहले नजर या पहले दृष्टि बात की जाए तो उन्होंने तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण के द्वारा भक्ति का निर्माण किया। अब केवल सरल लक्षण की प्राप्ति के द्वारा या सरल लक्षण के द्वारा हमें भक्ति मिल जाए या हमें प्राप्त वस्तु मिल जाए, ऐसा भी नहीं। जब तक तटस्थ लक्षण साथ में नहीं, एक त्याग पर भी इतना महत्व दिया है जो कि चरम अवस्था तक। अभी मंजर भाव को तो हमने श्रवण किया है और कल से हम श्रवण करते आ रहे हैं, और वहां पर श्री रूप गोस्वामी पाद ने इस भाव को सर्वोत्तम रूप से दिखाया, ये सर्वश्रेष्ठ। परंतु मंजरी भाव की विशेषता क्या? जहां पर सशुद्ध उपासना करती है, एक सभी भाव के अंदर में अपने सुख की अभिलाषा रह जाती है, कृष्ण की परिचर्या करें, सेवा करें और कृष्ण का आनंद विधान करें, यह तक है। परंतु मंजरिया कभी भी अकेले में कृष्ण को पाना तो नहीं चाहती है, जब राधा जी के साथ में ना हो तो राधा जी की सेवा परिचर्या करके अपने को खुशी मानती है, अपना सुख सर्वस्व त्याग करती है, जलांजलि देती है। इसलिए सर्व त्याग करके ब्रज गोपियां जहां पर रूप मंजरी आदि सर्व त्याग करके अपने सुख के लालसा तक त्याग कर दी और राधा कृष्ण की सेवा में डूबी गई, किंतु मात्र अपने सुख का गंध कर बैठी। इस प्रकार भक्ति में जब प्रारंभ से ही चले तो सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। जीवन में यदि ये त्याग नहीं हुआ तो सर्व की प्राप्ति, सर्व लक्षण की प्राप्ति भी असंभव हो जाता है। इसलिए उसको छोड़ करके नहीं, और सर्व लक्षण के प्रति हमारे दृष्टिकोण भी बना रहे हैं कि कृष्णा में सुलभ कैसे होना चाहिए। इस भाव के पर्यवसान को दिखाया जो महाप्रभु जी जिस भाव को आस्वादन करने आए, श्री रायानंद के सामने जैसे वो रस रहा है, जो महाभाव स्वरूप को दिखाया, श्री रूप गोस्वामी पाद ने उस भाव को व्यक्त करते हुए प्रेम विवर्त की स्थिति में जो महाप्रभु जी का अवस्थान और उस भाव का जो आस्वादन जो विश्व जगत में कोई नहीं कर सका, श्री रूप गोस्वामी पाद ने करके दिखाया। ऐसे ऐसे भक्ति के विषय में और रस के विषय में उनके चरण अनुभूति है। ब्रज गोपियों के विषय में जब देखा जाए, छोटी छोटी ब्रज गोपियां, छोटी सी ब्रज बालिका, उसके लिए श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। अब बहु ने नरक से पूछा, अरे नरक, आज तुम्हारी ये की दशा है, क्या बात है, तुम्हारे अंदर ऐसे अनमना भाव क्यों, जब तुम इतनी छोटी है, अभी तुम्हारे वक्षस्थल पर कपड़ा ढकने को तुम्हें आदि नहीं है, तुम्हें यह भी पता नहीं है, और तुम्हारा कोई अवयव तो अभी विकसित नहीं हुआ है, अभी कोई उम्र भी नहीं हुआ है, पर आज किसको देख करके तुम्हारे अंदर ऐसी भावना हो रही है, अर्थात कृष्ण के प्रति। ब्रज गोपियों का जो नित्य सिद्ध भाव, उस भाव के कारण ये प्रत्यास्त सिद्धि की। इस प्रकार हमारे आचार्य पाद सभी लोग इस प्रकार विचार वर्णन करते हुए भक्ति रस का वर्णन किया है। श्री भक्ति श्री भक्ति रसामे सिंधु में भक्ति विषय का वर्णन करते हुए तो साधा भावे साधा भावा, इस साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति का वर्णन करते हुए कहा कि साध भक्ति और साधन भक्ति दो प्रकार से देखा जाता है, परंतु जब तक अनर्थ है तब अनर्थ ग्रस्त अवस्था में उस भाव की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए भाव दुष्ट हो जाता है। अतः अपराध अनर्थ के प्रति सावधान सचेत रहना चाहिए। आज वृंदावन में आज तक सुनने को देखने को मिलता है, लोग अनंत निवृत्ति की ओर प्रयास न करके लोग उस भाव की ओर बढ़ना चाहते हैं, परंतु जब तक तटस्थ लक्षण में इन अनर्थों को दूर नहीं करें, हृदय में कभी भी शुद्ध भाव नहीं आ सकता है। राधा कृष्ण की लीला तो मधुर है और गोस्वामी लोगों के ग्रंथ भी अद्भुत है, मधुराते मधुर है। हमने कि ये कहने वाले व्यक्ति, हर एक व्यक्ति चाहे मुसलमान का भी देखा कि उज्जल निर्मल भक्ति रसा में सिंधु गीत गोविंद और चैतन्य चरता में वैष्णव साहित्य के ग्रंथों को पढ़ रखे हैं। और मुसलमान लोग मुझे बुला करके बोलते हैं और वैष्णव साहित्य की बातें कर रहे हैं, देखकर के ताज्जुब रह गया। और ऐसी ऐसी बात है कि ये बड़े बड़े सन्यासी दिग्गज सन्यासी तक नहीं बोल सकते। ऐसे ऐसे विद्वानों को देखा मुसलमानों ने और हाथ जोड़ करके बोले कि हम मुसलमान हैं, आप क्षमा करेंगे। परंतु महाप्रभु जी ने जिस भाव को दिया, जिस प्रेम को दिया, ऐसा तो विश्व जगत को कहीं देखा नहीं जाता। तो दुनिया के लोग तो देखते हैं कि सभी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार भी करते हैं, परंतु इस भक्ति रस में प्रवेश करने के लिए कितना हृदय निर्मल हो रहा है, कितने पवित्र भाव को धारण किया है। जब तक साधन के द्वारा इस भाव को हृदय में धारण नहीं कर करते, तब तक हृदय में नहीं आ सकता। इसलिए समय भी अधिक हो रहा है। आज गोस्वामी पार्टी के चरणों में हम सदस्य पुष्पांजलि समर्पण करते हैं। इन वक्तव्यों के साथ मेरा यही वक्तव्य
very hard to express in English what one is from character. Anyone can attest. There are no words in English except for all. What is some shadow words? But anyhow, I will tell the request of Yamdas Prabhu that he will speak something to me.
हमेशा के लिए दास, उनकी कारण विष्णु विष्णुप्रति सुख कैसे मिलेगा विष्णु स्मृति में, एक विष्णु स्मृति विष्णु कैसे हो सकता है? उनको ये बताया साधु शास्त्र कृपा जो भी इसलिए वही सनातन गोस्वामी को अवलंब मान करके संबंध आदि दे जब भी साधु के बचना में शिवाहु दूसरी भविष्य की बात रघुवश्य की बात की चैतन्य देव से आज प्रयाग प्रयाग
रात मन दास में होता है, रस में आशा चंडी लगाने से रास होता है। जहाँ पर रस चमत्कारिता का चरण आस्वादन, श्री उज्जल में कहा है उज्जल निर्मल में कि रसास्वादन अवतारे, भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं केवल रस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए। रस माधुर्य का आस्वादन पहले गोकुल से लेकर के वृंदावन, वृंदावन से गोवर्धन और ब्रज के अंतर, तो वात्सल्य रस, सख रस और मधुर रस, तीन रस को देखा जाता है। तीनों मुख्य होने पर में मुख्यतम मधुर रस, मधुर रस एकमात्र ब्रजगोपियों के साथ में आस्वादन किया है कि इसलिए यह ब्रज वृंदावन है जहाँ पर कृष्ण ने रास रचाया। प्रतिदिन रास होता है, इस रस रूपी उत्सव में सभी लोग कृष्ण रस का आस्वादन करते हैं ब्रजगोपियों के साथ। महादेव जी की बड़ी इच्छा हुई कि कृष्ण के इस रास क्रीड़ा को, रास लीला को हम दर्शन करें। इस रस चमत्कारिता का अनुभव करने के लिए उन्होंने यहाँ पर उपस्थित हुआ पौर्णमासी जोग माया जी को आकर उनसे कहा कि कैसे भी हमें एक बार लीला दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुंड में आप स्नान कर लीजिए, स्नान करने पर आप पहले स्नान करके आए, तो स्नान करके जब आए तो उस समय स्नान करके आए तो ऊपर आते ही देखा कि सखी वेश में, गोपी वेश में, तो गोपी वेश में बने हुए महादेव जी यहाँ पर बैठे हुए ईशान कोण में से जोग माया जी की आज्ञा से लीला का दर्शन करने लगे। तो उस समय कृष्ण ने शाम को ब्रज गोपियों से कहा, अरे आज लीला में कोई आनंद नहीं आ रहा है, लगता है जरूर कोई विजातीय व्यक्ति प्रवेश कर गया है, अब पता लगाओ कौन विजातीय व्यक्ति यहाँ पर है मेरे से। तो इस तरह से विजातीय व्यक्ति कहने से गोपियां ढूंढने लगी कि कौन विजातीय है, फिर भी जो कि उन्हीं के वेश में, गोपियों के वेश में बने हुए एक व्यक्ति को पकड़ लिया जिसका नाम धाम सब कुछ पूछा कि पति कौन है, गांव कौन सा है, कहां पर रहती हो, सारी बात पूछी, एक भी जवाब नहीं मिला। तब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर गोपियों से गुलचा गुलची खाना पड़ा और रोने लगे। तो उस समय जो माया जी आकर के बताया कि अरे छोड़ो छोड़ो, तुम लोग मारो मत, ये स्वयं महादेव जी है, इसलिए वो उन्होंने लीला देखने की इच्छा थी तो मैंने इसी रूप में बनाया। तो इसलिए यहाँ पर ईशान कोण में बैठ कर लीला का दर्शन कर रहे हैं। गोपियां कृष्ण के पास में पकड़ करके ले आई, तो उस समय कृष्ण ने कहा, देखो मेरे अतिशय प्रिय हरिहर एक आत्मा महादेव जी हैं, दिवाली देव और मेरे प्रेम में सदा सर्वदा डूबे रहते हैं, तुम लोग अनुग्रह करो कि तुम्हारे लीला का अनुभव अनुभूति कर सके। अब रही इसलिए महादेव जी यहाँ पर गोपीश्वर बन करके रासलीला का दर्शन करते हैं, उस रस की अनुभूति करते हैं तथा सारे जीवों को इस लीला में प्रवेश कराते हैं। कुल देवी योग माया मोरे कृपा करी आवरण संबरी वे कवि विस्तृत हो। योग माया रूप में जो कि कुल देवी योग माया, इस माया के पर्दा को, आवरण को हटा करके हम सबको अनुग्रह जब करेंगे तब हम लीला में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए प्रारंभ में ही कहा गया है कि योग माया को उपास्पित है, कृष्ण ने आश्रित योग माया को आज आश्रय बनाया और स्वयं उसके द्वारा इस लीला का संपादन कर रहे हैं। अब लीला तो बहुत बड़ी है, विस्तार है, परंतु तो संक्षिप्त में इतने बात को सोचा जाए कि रासलीला का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या स्थिति। इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि रमा ननाभम नव कुमारुणम, रमा माने पुरुषवाणु नंदिनी राधारण, राधा जी के मुखमंडल का स्मरण करके जिनके अंदर में उद्दीपना हुई वो कौन है, जो कि महाभाव शिरोमणि, महाभाव स्वरूप श्री राधा जी। कृष्ण स्वयं ब्रज में महाभाव रस का आस्वादन करते हैं, इस महाभाव रस को आस्वादन करने के लिए उनका लीला विलास ये और कहीं भी नहीं है, किसी में भी प्रकाशित नहीं हुआ। और भी जितने ब्रज गोपियां हैं, कोई नित्य सिद्धा है तो कोई साधन सिद्धा है, श्रुति चरी ऋषि चरी आदि बहुत प्रकार के हैं, तो इसलिए ये पंचायती राज यहाँ पर हुई थी हुआ था, जिसमें की समस्त गोपियां सम्मिलित सब जैसे आए तो इसमें क्या हुआ, खिचड़ी बन गया। अब खिचड़ी में से छांट छांट करके उन्होंने जैसे चावल से धान को निकाल देते हैं ऐसे ही किया। इसलिए इस लीला में उन्होंने प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए दो तरीका अपनाया, एक वाम भाव और एक दक्षिण भाव। दक्षिण भाव को छोड़ करके वाम भाव के वाम भाव में आ करके टेढ़े बन गए, और टेढ़े बन करके गोपियों के हृदय की विशुद्ध भावना को प्रेम तत्व को जानना चाहा, विश्व जगत में प्रकाशित कर दिया कि गोपियों के हृदय की भावना क्या है, क्या वे अपना सुख जाती है या देह सुख वासना लेकर के आई है या विशुद्ध प्रेम वासना लेकर के आई, उनके अंदर क्या भावना है, उस भाव को प्रकट किया। करते हुए फिर गोपियों के साथ में लीलाएं, अब गोपियों ने जैसे सब गोपियां थी उन गोपियों में से सबकी भावना हुई कि हमारे जैसे सौभाग्यवती कौन होगा कि परब्रह्म कृष्ण को हमने प्राप्तियतम रूप में प्राप्त किया है, इसलिए सौभाग्य मत को छुड़ाने के लिए कि इतने में ही संपूर्ण प्राप्ति नहीं होती है कि हमारी सेवा में अपने आनंद में कोई खो जाए तो हमारी सेवा नहीं होती है, हमारी प्रेम सेवा में आगे और चलना होगा, इसलिए समस्त वासनाओं को अभिलाषाओं को त्याग कराकर कृष्ण अब अंतर्धान हो गए। जैसे कि अंतर्धान हुए तो प्रेमियों का स्वाभिमान जो था, जिसमें कि मद अभिमान था कि हमारी जैसी सौभाग्यवती ये सौभाग्य मद टूट गया कि इतने में नहीं, कृष्ण ने वही समझाया देखो इतने में नहीं, विरह आरती के द्वारा प्रेम बढ़ जाए और उस प्रेम में मुझको प्राप्त करे कि कृष्ण प्रेम रस रसी। अंत में जब गोपियों के विरह का वर्णन हो गया गोपी गीत का, उसके पश्चात कृष्ण ने गोपियों को यही समझाया कि देखो तुम लोगों का प्रेम जो है, जिसका प्रेम परिपक्व है उस प्रेम को मैं आस्वादन करता हूँ, जिसका प्रेम परिपक्व नहीं हुआ उसको मैं आस्वादन नहीं कर पाता। इसका एक उदाहरण बड़ा सुंदर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिया है कि एक साधक और एक सिद्ध है। कृष्ण कहते हैं कि सिद्ध भक्त जो है, सिद्ध परिकर उनका प्रेम मैं आस्वादन करता हूँ, जो साधक है उनका प्रेम अभी प्रस्फुटित तो हुआ नहीं तो उसका प्रेम कैसे आस्वादन करूँ, और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका प्रेम अभी आत्मका हुआ है। जैसे कि एक पेड़, आम के पेड़ में मंजरी लगती है, उससे छोटा छोटा आम होता है, उसको आम ही कहा जाता है, देख करके मालिक को बड़ा खुशी होता है और फिर पहरादारी करता है। जिस समय आम बड़ा बड़ा हो जाता है और पकने को आ जाता है तो पेड़ के नीचे झोपड़ी बांध करके बैठ जाते हैं और पहरादारी करते हैं। जब देखते हैं कि दो चार आम पक गया है तो उस समय सारे आम को तोड़ लाते हैं, सबको तो तोड़ लाया, पका हुआ आम खाने लायक है, मीठा है, सुगंध है, तो उसको तो आस्वादन किया। जो पके नहीं है उसको पकाने के लिए गर्मी में गैस में रखना पड़ता है जिससे कि पक जाता है, पकने के बाद में फिर पानी डाला जाता है, ठंडा करके फिर खाया जाता है। ऐसे कृष्ण कहते हैं जैसे एक साधक भक्त और सिद्ध भक्त जिनका सिद्ध प्रेम परिपक्व हो गया है मैं उस प्रेम का आस्वादन करता हूँ, और जो साधक जीव है भगवान दूर से अवलोकन करते हैं, उसकी पहरेदारी करते हैं, कभी सुख में और कभी दुख में बाधा विपत्तियों के द्वारा उनकी भक्ति को प्रेम उत्कंठा को बढ़ाते हैं। जब साधक भक्त भजन साधन करते करते जरा उत्कंठा की स्थिति में पहुंच जाता है और आधा पका हुआ आम जैसे उस समय कृष्ण उनके सामने आ जाते हैं और पहरेदारी करते हैं, तो कहते हैं कि मैं ऐसे ही उनका प्रेम को बढ़ाता और विरह विप्रलंबन के द्वारा प्रेम को परिपुष्ट करके उस प्रेम को आस्वादन करता हूँ। इसलिए कृष्ण लीला रस रसिक है, रास रसिक उस प्रेम रस का आस्वादन करते हैं, इस जगत के साधन जीव साधना करके वहाँ पहुंचते हैं योग्य बन करके, और वहाँ के जो योग्य नित्य सिद्ध परिकर है उनके साथ कृष्ण नित्य लीला विलास करते हैं, उनके महाभाव रस का आस्वादन करते हैं। और इधर में सारी ब्रज गोपियों को राधा जी के अनुगत्व में महाभाव रस के द्वारा निमज्जित कराकर सब उनके साथ में रास रचाया लीलाएं की हैं। इस प्रकार रासलीला का ये तात्पर्य है, मैं यहीं पर रोकना बुझा रखता हूँ। बादशाह को उतर
If anyone go to the places of Pasan, especially so high class of Pasan, anyone will touch, any will hear of the of Krishna from Gopi Prabhu. No offense to him. If offense at the same time, you should try to give proper respect to Guru and Vaishnava. Aparad, and go on chanting and remembering, sometimes coming to the high class of Pasans of Krishna in the guidance of Gaur Pranananda.
Thank you.